आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च पैड से रविवार शाम 5:26 पर भारत के अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के जरिए 4410 किलो वजनी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। CMS-03 नाम का यह उपग्रह भारतीय जमीन से GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। अगले 3-4 दिनों में यह उपग्रह अपने इंजन फायर कर स्वयं को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करेगा। CMS-03 एक मल्टीबैंड कम्युनिकेशन उपग्रह है जो हिंद महासागर के बड़े इलाके सहित पूरे भारतीय इलाके को लगातार कवरेज देगा। इस उपग्रह से भारत को न केवल स्वयं का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मिलेगा बल्कि यह भारतीय नौसेना की संचार और मारक क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। इसके प्रक्षेपण में LMV-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसी रॉकेट ने चंद्रयान को भी सफलतापूर्वक चंद्रमा तक पहुंचाया था। आइए सुनते हैं इस प्रक्षेपण के सीधे प्रसारण के कुछ अंश।
CMS-03 सैटेलाइट सेपरेटेड।
जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। CMS-03 अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है।
We have had a successful mission of LVM-3M5 CMS-03. Eighth successful mission for the LVM-3 rocket, fifth in its operational series. CMS-03
जहां एक ओर भारत विज्ञान में नए कीर्तिमान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता दिख रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई राजनीतिक दलों ने आरोपों, प्रत्यारोपों, वादों और हिंसा की सभी सीमाएं लांग दी हैं। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल नेता दुलार चंद की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया। उन पर 30 अक्टूबर को जनसुराज के उम्मीदवार के प्रचार के दौरान श्री दुलार चंद की हत्या करवाने का आरोप है। गिरफ्तारी के अगले दिन ही अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। अपने पार्टी के नेता की हत्या से गुस्साए बिहार में राजद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ गठबंधन को आड़े हाथों लिया।
लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10,000 रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं ASI की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और NDA को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हत्या से किनारा करते हुए अनंत सिंह को जदयू का प्रत्याशी बताते हुए कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ है, कानून कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बिहार की कुल 243 सीटों के लिए पहले चरण में 121 सीटों पर वोट 6 नवंबर को डाले जाने हैं, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर के दिन घोषित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम स्थित काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी के दौरान भगदड़ मचने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। इस मंदिर में हर शनिवार 1500 से लेकर 2000 श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 1 नवंबर के दिन एकादशी और कार्तिक मास होने के कारण भीड़ असामान्य रूप से बढ़ 20,000 से अधिक हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर पहली मंजिल पर है जिसका आने जाने का रास्ता एक ही है। भारी भीड़ के दौरान रास्ता जाम हुआ जिससे लोगों की धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई और भगदड़ मची। 13 एकड़ में फैला यह मंदिर 4 महीने पहले ही खोला गया था। इसे प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, इसीलिए इसे चिन्ना तिरुपति यानी मिनी तिरुपति भी कहा जाता है। मंदिर हरमुकुंद पांडा नामक एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व में है जिन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अगर आयोजन की पुलिस को पहले सूचना दी गई होती तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाई जा सकती थी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मंदिरों में इस साल 3 बड़ी त्रासदी में 23 मौत हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नायडू ने इसी साल 8 जनवरी को तिरुपति में भगदड़ के बाद मंदिर प्रबंधन विभाग के साथ कई लंबी बैठकें कर योजना बनाई थी, पर उनमें से अधिकतर लागू नहीं की गई हैं। उत्तर भारत के कई शहरों खासकर राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण दिवाली के 2 दिन पहले से ही खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आसपास के राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलने से प्रदूषण के स्तर में और अधिक इजाफा होने की आशंका है। इस बीच कई अखबारों और स्वतंत्र पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट्स में आरोप लगाया है कि प्रदूषण जांचने के केंद्रों के इर्द गिर्द लगातार पानी की बौछार कर दिल्ली सरकार प्रदूषण का स्तर जबरन कम करने की कोशिश कर रही है। इसका प्रमाण कई यूट्यूब चैनलों ने वीडियो बना सोशल मीडिया में दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के ताज़ा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज डेटा ने 2023 में दिल्ली में हुई प्रत्येक 7 में से 1 मौत का कारण वायु प्रदूषण बताया है। इस डेटा के अनुसार वायु प्रदूषण दुनिया में हो रही मौतों का उच्च रक्तचाप के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है। IIT कानपुर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आसमान में क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कर दिल्ली में प्रदूषण स्तर घटाने की कोशिशें भी बेकार साबित हुई हैं। और अब समाचार खेल जगत से। प्रदूषण बेशक जानलेवा हो, लेकिन कई भारतवासी इसके बावजूद खुशी के मौके पर पटाखे जलाने से बाज नहीं आते। रविवार रात दिल्ली अचानक ही पटाखों की आवाज से गूंज उठी जब महिला एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की। इससे कुछ घंटे पहले ही भारतीय पुरुष टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 में 5 विकेट से हरा 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को एक कठिन मुकाबले में हरा पहली बार विश्व कप उठाने वाली भारतीय महिला टीम की जीत बहुत ही खास रही। नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। स्मृति मंधाना ने 58 गेंदों पर 45, शेफाली वर्मा ने 78 गेंदों पर 87, दीप्ति शर्मा ने 58 गेंदों में 58 और ऋचा घोष ने आखिरी ओवर में 24 गेंदों में 34 रन बना भारत का स्कोर 7 विकेट पर 298 पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने बढ़िया शुरुआत की। उसका पहला विकेट 51 रन पर गिरा जबकि तीसरा विकेट 20.2 ओवर में 114 रन के योग पर गिरा। लेकिन इसके बाद दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा की जबरदस्त गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को ज्यादा कुछ कर पाने का मौका ही नहीं दिया। कप्तान लॉरा वोल्फहार्ट ने 98 गेंदों में 101 रनों की शानदार पारी खेल अपनी टीम को देर तक संभाले रखा, लेकिन 42वें ओवर में दीप्ति के ओवर की पहली गेंद पर उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की हार तय हो गई और वह 45.3 ओवर में केवल 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शेफाली को उनके शानदार 87 रन और 2 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द फाइनल का पुरस्कार दिया गया, जबकि दीप्ति शर्मा को उनकी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
Thank you.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।